नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस रात्रिकालीन संस्करण में। और आज हम बात करने जा रहे हैं अमी गणात्रा जी से, जिनकी महाभारत की कहानियां हम पहले यहां पर दिखा चुके हैं आपके साथ चर्चा में। और आज हम बात करेंगे अमी गणात्रा जी से रामायण की कहानियों के बारे में। आपका स्वागत है अमी जी, कैसी हैं आप?
थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। जय श्री राम।
जय श्री राम। आपकी जो पुस्तक है वो पहले मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। हम इस पुस्तक की बात कर रहे हैं, रामायण अनरैवल्ड, लेसर नोन फैसेट्स ऑफ ऋषि वाल्मीकि'स एपिक। और इसमें से हम कुछ कहानियों पर आज चर्चा करेंगे। तो आप कौन सी कहानियाँ हमें बताना चाहेंगी? और सबसे पहले तो ये बताएं कहानियों से पहले कि आपकी जो प्रेरणा है वो तो हमें पता है, वो आपने महाभारत पहले लिखी है, तो रामायण जो है उसका एक बिल्कुल, जिसको हम कह सकते हैं कि लॉजिकल सीक्वल ही है। तो इसमें जो आपका पहला अध्याय है उसमें आपने अयोध्या और उस नगर के बारे में कुछ जो अपने विचार दिए हैं, पहले उनसे आरंभ कर लें मेरे विचार से तो उचित रहेगा।
जी संजय जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा सोर्स इस पुस्तक के लिए क्या रहा है। और क्योंकि बहुत सारी रामायण की बातें होती हैं कि लोग कहते हैं 300 रामायण है, तो हम कौन सी रामायण को सही माने, तो मैंने इस पुस्तक के लिए वाल्मीकि रामायण को ही मेरा मेन सोर्स स्रोत माना है। क्योंकि मैंने इतिहास की दृष्टि से मैं दोनों महाभारत और रामायण को देखती हूँ। और अगर हम 300 रामायण भी कहें तो शतावधानी गणेश जी का एक बहुत ही सुंदर ऐसे है जिसमें वो कहते हैं, प्रूव करते हैं कि हम 300 भले ही कहें पर बाकी सारे वाल्मीकि रामायण के रीटेलिंग्स या उसी के किसी रूप में रूपांतरित हुए हैं। अगर मेन कहा जाए तो जिन्होंने वो बाकी रामायण लिखे हैं तो वो भी वाल्मीकि जी को ही प्रणाम करते हैं सबसे पहले। इसलिए मैंने वाल्मीकि रामायण को सोर्स माना है, तो मैं जो भी कुछ कह रही हूँ वो उसी के बेसिस पर कह रही हूँ। तो सबसे पहले तो ये बात है। और वाल्मीकि रामायण में भी गीता प्रेस वाला जो वर्जन है उसको मैंने बेस माना है विथ रेफरेंस टू बड़ौदा क्रिटिकल एडिशन। सो दीज आर, दिस इज द मेन। तो शुरुआत में जैसे आपने कहा कि हाँ, मेरा थोड़ा सा फोकस रहा है जो मैंने महाभारत में भी किया था कि जो जगहें मेंशन हुई हैं, जो वंश राम श्री राम के जो वंश है, इक्ष्वाकु वंश जो है, सीता जी का जो वंश है उसके बारे में थोड़ा सा लिखा और नगरों के बारे में लिखा। और उसका हेतु उद्देश्य संजय जी ऐसा रहा है कि कई बार हम कह देते हैं कि ये सारा मिथ है, ये सब झूठ है, ये केवल कथाएं हैं। तो अगर केवल कथाएं हैं तो श्री राम जी की 33 वंशज का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीता जी के 23 वंशजों का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये सब डॉक्यूमेंट क्यों करेंगे वो, इतने जगहों का डिस्क्रिप्शंस क्यों करेंगे अगर ये केवल और केवल एक माइथोलॉजी है और इसका इतिहास से कुछ लेना देना नहीं है। तो हमारे हमें ये भी पता चले कि किस लेवल का डिटेल हमारे इतिहास में कैप्चर हुआ है, वो थोड़ा सा हेतु था। तो अगर अयोध्या की बात करें तो मैंने तो बहुत शॉर्ट में लिखा है कि अयोध्या का क्या डिस्क्रिप्शन आता है। और सबसे पहले बालकांड में ही जब ये शुरू होता है तो अयोध्या का डिस्क्रिप्शन आता है कि वो ऐसी नगरी है जो क्षेत्रफल है अयोध्या का, वो अगर हम देखें तो आज के कंपैरिजन में जो अयोध्या का क्षेत्रफल की बात होती है तो मैं आपको बताती हूँ कि मुंबई, दिल्ली, न्यूयॉर्क उनसे भी बड़ा है। ऑलमोस्ट चाइना में शांघाई जो है, जिसका 6000 स्क्वायर मीटर कुछ तो वो है, उतना बड़ा अयोध्या का कवरेज है। इट्स अ ह्यूज सिटी इवन आज के कंपैरिजन में। और वहां पर कहते हैं कि इवन जो लोग, और इतने इतने लोग हैं अयोध्या में कि सारे जो घर है वो भी पास पास लगे हुए हैं, लाइक और सबके घर बड़े भी हैं, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स भी वहां पर है, खेत खलिहान है, वहां का पानी है वो तो इतना मीठा है कि जैसे आप गन्ने का जूस पी रहे हो, ऐसा डिस्क्रिप्शन उसमें आता है। और बहुत ही वेल प्लान्ड सिटी है, वहाँ के लोगों का जो डिस्क्रिप्शन है कि सारे ही अत्यंत समृद्ध हैं, फिर वो चारों वर्णों के जो लोग हैं वो अत्यंत समृद्ध है, वहाँ पे कोई डाकू, वहाँ पे कोई चोरी नहीं होती। क्यों चोरी नहीं होती? क्योंकि सब अपने काम में मस्त हैं, उनको जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो भी जरूरियातें हो वो उनके काम से पूरी हो रही है। और अयोध्या में वहां के लोगों के अलावा बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे हम आज देखते हैं ना बिजनेस करने के लिए हम यहाँ से बाहर जाते हैं, वैसे बाहर से लोग ये जो व्यापार करने के लिए अयोध्या आते थे, बहुत सारे नर्तक नर्तकियां आती थी वहां पे अपनी अपनी कला दिखाने के लिए। और उसमें यही डिस्क्रिप्शन है कि जो स्त्रियां हैं तो स्त्रियां भी एकदम सुरक्षित थी उस नगर में। तो अयोध्या का एक अत्यंत सुंदर सेफ सिक्योर नगर, मल्टी जो हम कहते हैं ना कि सबसे बड़ा सिटी, उस तरीके का एक डिस्क्रिप्शन अयोध्या का हमें मिलता है रामायण में।
जी, और उसके बाद फिर जब राम कथा आरंभ हो जाती है तो राम कथा के आरंभ में ही फिर हम पूरा विश्वामित्र जी का प्रकरण देखते हैं। तो विश्वामित्र जी को वाल्मीकि जी ने जिस तरह से बताया है वो भी थोड़ा सा इंगित करेंगे।
जी, तो मुझे विश्वामित्र जी की जो कथा है वो अत्यंत प्रिय है, तो मैं थोड़ा सा समय लेके इस बारे में बताती हूँ।
जी 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 बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये आरंभ ऐसे होता है कि राजसभा लगी है महाराज दशरथ की, और द्वारपाल आके कहते हैं कि विश्वामित्र ऋषि आए हैं। तो दशरथ अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि विश्वामित्र एक महान ऋषि हैं जो हम सब जानते हैं, वो तो दृष्टा कहलाते हैं, जो गायत्री मंत्र है वो उनसे आया है। तो वो उठते हैं, दरवाजे तक जाते हैं, स्वयं जाते हैं विश्वामित्र जी को लाने, और उनको कहते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना हो वो मैं पूरी कर दूंगा, तो आप केवल मुझे बताइए आपका आने का उद्देश्य का क्या है। और विश्वामित्र जी उनको सही में बता देते हैं, वो कहते हैं कि मैं राम को लेने आया हूँ, मैं आपका पुत्र जो है श्री राम उसको मैं लेने आया हूँ, क्योंकि मैं तपस्या कर रहा हूँ, मेरा एक यज्ञ है, एक संकल्प है जो जिसमें विघ्न डाल रहे हैं, जिसमें कुछ राक्षस हैं वो विघ्न डाल रहे हैं, और उनसे सुरक्षा के लिए मैं श्री राम को लेकर जाना चाहता हूँ। अब उस समय राम जी की आयु 16 वर्ष भी नहीं है, 16 वर्ष से भी कम के हैं वो। तो दशरथ कहते हैं कि अरे ऐसे कैसे मैं अपने पुत्र को, जो इतना छोटा सा है, भी तो बालक है वो, उसको कैसे भेज दूं? आप कहो तो मैं आ जाता हूँ, आप कहो तो मेरी सेना के साथ मैं आ जाता हूँ। अच्छा, और आप मुझे बताइए है कौन ये राक्षस? तो विश्वामित्र कहते हैं कि रावण, लंका के जो राजा है रावण, उनके दो ये है राक्षस है, मरीच और सुबाहु, और ये लोग विघ्न डालते हैं, ये लोग मांस भक्षी हैं, मांस फेंकते हैं मेरे यज्ञ में, और इनसे इनसे सुरक्षा करनी है यज्ञ की। तो रावण का नाम सुन के, सुबाहु मरीच का नाम सुन के, तो दशरथ भी बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। वो कहते हैं ये तो इतने शक्तिशाली बलशाली राक्षस हैं, इनके साथ तो मैं भी, दोनों के साथ तो मैं भी नहीं लड़ सकता, पर मैं आपको आश्वासन देता हूं कि एक के साथ तो मैं लड़ूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा, आप राम को मत लेकर जाओ। तब विश्वामित्र जी खैर नाराज होते हैं, पर वो ये कहते हैं कि चलो ठीक है, मैंने तो सुना था इक्ष्वाकु वंश के राजा जो है वो कभी भी झूठ नहीं करते, अपना दिया हुआ वचन, तुम करना चाहो तो कर लो, ठीक है मैं जाता हूं। तब वशिष्ठ आते हैं और वशिष्ठ कहते हैं कि अरे तुम ये मत समझो कि वो स्वयं सुबाहु और मरीच का को सबक नहीं सिखा सकते, स्वयं निग्रहण शक्त, वो कहते हैं स्वयं निग्रहण शक्त, ये उन दोनों को संभाल सकते हैं, तो फिर क्यों आए? तव पुत्र हितार्थाय अभियाचये, आपके पुत्रों के हित के लिए वो आए हैं उनको लेने के लिए, तो आप निश्चिंत रहो और उनके साथ भेजो। तो फिर दशरथ उनको भेज देते हैं, पर अब वशिष्ठ इतने कॉन्फिडेंटली, इतने विश्वास पूर्वक विश्वामित्र जी के लिए कैसे कह रहे हैं, इसके पीछे की एक लंबी सी कहानी है। तो जो मैंने कैप्चर किया है द मेकिंग ऑफ विश्वामित्र इस चैप्टर में। तो विश्वामित्र एक राजा थे, कौशिक उनका नाम था, बहुत बलवान राजा थे, और एक बार वो शिकार करने बाहर जाते अपनी सेना के साथ, और वशिष्ठ मुनि के आश्रम में वो पहुंच जाते। तो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में वो जाते हैं, तो हजारों की उनकी सेना थी, तो ऋषि वशिष्ठ जी उनसे कहते हैं कि आप आइए, मैं आपका आतिथ्य करना चाहता हूँ, तो आप सबको मैं भोजन, आपको जो भी खाना है भोजन आपके लिए तैयार करवाता हूँ। अब तब कौशिक जो विश्वामित्र जो पहले कौशिक राजा थे, उनको लगता है अरे ये कहाँ से इतनी बड़ी सेना को खाना खिला पाएंगे, तो वो पहले थोड़ा सा संकोच करते हैं, बट विश्वामित्र कहते नहीं नहीं, वशिष्ठ कहते आप चिंता मत करो हो जाएगा। और उनकी एक गाय होती है शबला, शबला कामधेनु की पुत्री है ऐसा कहा जाता है, तो शबला के द्वारा अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजन उत्पन्न होते हैं, और सारी जो सेना है वो पेट भर कर खाती है, तो ये देखकर कौशिक राजा कौशिक को लगता है कि अरे ये शबला जो है ये तो रत्न है, तो ऐसा रत्न तो राजा के पास होना चाहिए, ये मुनि का क्या इसका प्रयोजन है, ये तो राजा के पास होना चाहिए। तो वशिष्ठ से कहते हैं कि ये शबला को मुझे आप दे दो। तो वशिष्ठ कहते हैं कि नहीं नहीं मेरा तो यज्ञ, मेरा जो पूजा पाठ का जो भी सारा काम है वो इसी के द्वारा होता है, इसलिए इसको तो मैं दे ही नहीं सकता और ये भी मेरे बिना नहीं रह सकती। पर राजा तो राजा है, राजा का मन जिस पे आ गया बस, तो वो कहते हैं अरे आप ऐसे मुझे कैसे मना कर सकते हो। एंड ही वो कहते हैं कि आप जो कहो जो कीमत आप लगाओ, पर वशिष्ठ नहीं देते। जो वशिष्ठ नहीं देते तो उनके बीच तो कौशिक को गुस्सा आ जाता है और वो और उनके सैनिक आक्रमण कर देते हैं आश्रम पर और आश्रम का वो नष्ट करने लगते हैं। तब ऐसा कहा गया है, कथा में ये आता है कि शबला के द्वारा बहुत सारे बर्बर और अलग अलग जातियों के सैनिक आते हैं और वो इन लोगों को हरा देते हैं। कौशिक के की पुत्रों की भी मृत्यु हो जाती है और सेना भी हार जाती है। तो ये देखिए कौशिक एकदम अचंभे में पड़ जाते हैं कि अरे एक ऋषि, एक जो ब्राह्मण ऋषि है उसके पास इतनी शक्ति कैसे, मुझे भी ये शक्ति चाहिए, मेरे पास और अस्त्र शस्त्र चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा अहंकार पे लग गया है, ईगो हर्ट हो गया। तो वो जाते हैं तपस्या करते हैं, शिव जी की तपस्या करते हैं और अस्त्र इकट्ठा करके वापस आते हैं और उनको लगता है अब तो मैं देख लेता हूं कैसे मुझे मना करते हैं, और फिर से वो आक्रमण करते हैं वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर। और तभी ऐसा दिखाते हैं कि वशिष्ठ मुनि केवल अपने ब्रह्मदंड से, अपने ब्रह्मदंड में, उनके ब्रह्मदंड में इतनी शक्ति है कि वो जितने भी वार कौशिक करते हैं वो उनको नष्ट कर देते हैं। ये देख के और भी आश्चर्य होता है कौशिक को कि ये मेरा जो क्षत्रिय धर्म, जो अस्त्र शस्त्र की मैं जब बात कर रहा हूं, इसका ये तो बिल्कुल उपयुक्त है ही नहीं, मुझे वो शक्ति चाहिए जो वशिष्ठ जी में है, और वो शक्ति पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। और उसके बाद वो तपस्या में लीन हो जाते हैं, ब्रह्म ऋषि बनने की तपस्या उनको करनी है कि मुझे भी ब्रह्म ऋषि चाहिए, मुझे ब्रह्म बल चाहिए। तो थोड़ा सा उसको कंसाइजली कहते हुए कि वो जो उनकी तपस्या है उस दौरान किस तरीके से वो एक एक करके हमारे जो सारे इम्पल्सेस है ना, जो हम कहते हैं कि षड रिपु, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, उसको किस तरीके से वो ओवरकम करते हैं वन बाय वन और कितनी उसमें अड़चने आती है। एक बार तो ऐसे होता है कि जब उनकी तपस्या में वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं तो एक दिन मेनका को वो देखते हैं, तो मेनका आती है और मेनका अत्यंत सुंदर है, तो मेनका को देखकर उनका काम जग जाता है और 10 वर्ष वो साथ बिताते हैं, उनसे शकुंतला का जन्म होता है ये भी कहा गया है। और फिर उनको लगता है कि अरे ये काम के कारण, क्योंकि मेरा काम पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं था, इसके कारण मेरी तपस्या भंग हो गई, फिर उनको वापस शुरू करना पड़ता है। फिर वो जब वापस शुरू करते हैं तो फिर इंद्र रंभा को भेजते हैं उनका टेस्ट लेने के लिए। अच्छा, अब इस बार काम पर तो काबू आ गया है, पर उनको गुस्सा आता है बहुत ज्यादा। वो कहते हैं अरे ये इंद्र क्या कर रहा है, मेरी तपस्या भंग करने पे लगा है, और वापस वो उल्टा सीधा कह देते हैं। पर जैसे ही वो कहते हैं, क्रोध करते हैं, उनको वापस ध्यान आता है कि अच्छा अभी भी क्रोध पर मैं विजय नहीं पा सका, तो उनकी फिर तपस्या शुरू होती है। ऐसी तपस्या करते हैं कि बहुत सारे वर्षों तक कि कुछ खाए बिना, सिर्फ हवा खाकर तपस्या करते हैं, और जब उनका वो संकल्प पूरा होता है तो स्वयं बैठते हैं और अपना खाना भोजन पकाते हैं, वो खाने ही वाले होते हैं। फिर इंद्र वापस आते हैं किसी ब्राह्मण का रूप धारण करके। अब अतिथि आए हैं तो अतिथि को तो भोजन सबसे पहले देना है, तो इंद्र को ऐसा है कि कहीं गुस्से में भूख के मारे वापस कुछ मना कर देंगे विश्वामित्र, पर इस बार फाइनली उन्होंने अपने भूख प्यास पर भी काबू पा लिया है, जो इनहेरेंट ह्यूमन इंस्टिंक्ट जिसे कहते हैं उन पर भी काबू पा लिया है। वो अपना भोजन शांति से दे देते हैं वो ब्राह्मण को, और ब्राह्मण सुख अतिथि का पेट भरे तब तक वो वहां रहते हैं और कुछ नहीं कहते। तब जाके ब्रह्मा जी आते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ अब आप ब्रह्म ऋषि बन गए, और विश्वामित्र कहते हैं ऐसे नहीं, जब वशिष्ठ कहेंगे तब मैं मानूंगा। और वशिष्ठ आके कहते हैं कि नहीं ठीक है अब आप बन गए ब्रह्म ऋषि। और उस समय जिस कारण से उन्होंने शुरू किया था कि वो वशिष्ठ को सबक सिखाना चाहते थे, वो जो उनका उनका शत्रुत्व था वो भी फिर मिट गया, उसमें उनका क्रोध भी चला गया, और तब से एक दूसरे के लिए उनका जो भाव था वो और भी बढ़ गया। इसलिए वशिष्ठ इतने कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि मैंने देखा है, मैंने कौशिक को विश्वामित्र बनते हुए देखा है कि कैसे दिस इज द होल मेकिंग ऑफ विश्वामित्र, कि किस तरीके से वो ऋषि बने, महाब्रह्म ऋषि बने, अपने प्रत्येक इंपल्स इंस्टिंक्ट षड रिपुओं पर कंट्रोल पाकर वो ऋषि बने
जी। और फिर विश्वामित्र जी लेके जाते हैं और वहां पर वो एक ताड़का का प्रसंग आता है, जब ताड़का को ऊपर बाण चलाने से मना कर देते हैं
जी
भगवान राम।
तो ये जो प्रसंग है वो राम जी का सबसे, जो कहे ना कि राजधर्म में, राजधर्म की शिक्षा जो उन्हें मिली है वो इस प्रसंग से मिली है। हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि गौ और स्त्री जो है वो अघन्य है, उनको आप मार नहीं सकते। तो जब विश्वामित्र जी वो राम लक्ष्मण को लेकर जाते हैं और ताड़का वन जो है उसके पास जब आते हैं, तो बहुत ही घना जंगल है, वो बहुत भयानक जानवर है, वहां पर आवाजें आ रही हैं। तो श्री राम पूछते हैं विश्वामित्र जी से कि ये क्या है, यहाँ पे ऐसा क्यों है, ये निर्वन एकदम निर्जन जंगल क्यों है, इतना भयानक क्यों है। तब विश्वामित्र उनको ताड़का की कहानी बताते हैं कि कैसे वो राक्षसी ने यहाँ पर जो वहां पर दो नगर हुआ करते थे, उन नगरों को तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया, वो जगह किसी के रहने लायक नहीं हुई, ब्राह्मणों का तिरस्कार हुआ, लोगों का तिरस्कार हुआ, पूरे नगर नष्ट हो गए। और अब भी वो वहां पर वो निर्जन सा वन है, इतना भयानक वन बना हुआ है जहां पर ताड़का रहती है। तो अगर वहां पर शांति चाहिए तो ताड़का का वध होना आवश्यक है, वहां पर सुख समृद्धि चाहिए तो ताड़का का वध होना आवश्यक है, और उस समय ताड़का भी आती है। तो विश्वामित्र कहते हैं कि आप ये अधर्मी है, इसका आप नाश करो। अच्छा, अब स्त्री है ताड़का तो उसको मारे कैसे, यही सबसे बड़ा प्रश्न राम जी के मन में है कि स्त्री को कैसे मारे, क्योंकि ये तो शास्त्र के विरुद्ध हो गया। तब विश्वामित्र कहते हैं उनको कि नहीं स्त्री वधे घृणा कृता, कि स्त्री वध में भी तुम्हें घृणा नहीं करनी चाहिए। क्यों घृणा नहीं करनी चाहिए? तो वो कहते हैं कि एक राजा का कर्तव्य होता है, क्या कर्तव्य होता है, चातुर वर्ण हितार्थाय, चतुर चारों वर्ण अपने लोगों के हित के लिए जो भी करना चाहिए वो राजा को करना चाहिए। कैसा? पातकम वा सदोषम वा, दृशसम वा अनृशसम वा, अच्छा बुरा, क्रूअल अनक्रूअल, कैसा भी काम हो, कर्तव्य राज सुनना, जो भी राजा है जिसके कंधों पे राज का भार है उसको किसी भी प्रकार का काम करना चाहिए। अगर क्यों, प्रजा रक्षण कारणात जो भी करना चाहिए वो राजा को करना चाहिए। राजभार नियुक्ता नाम एषः धर्म सनातनः, वो कहते हैं कि जो राजभार जिसके कंधों पर है उसका एक ही सनातन धर्म है प्रजा रक्षण, चातुर वर्ण हित, उसके लिए अच्छा बुरा ये भी नहीं सोचना है, जो करना है वो करना है अपने समाज अपने लोगों की रक्षा के लिए। और फिर वो कहते हैं अधर्म्याम जहि काकुत्स्थ धर्मो ही अस्याम न विद्यते, ये अधर्मी है, इसमें एक इतना भी धर्म नहीं है तो इसको मारो और अधर्म पर विजय पाओ। और फिर ऑफकोर्स वो युद्ध होता है ताड़का के साथ, तभी भी मन में थोड़ा संकोच अभी भी है श्री राम जी को, पर वो जब देखते हैं कि जिस फोर्स से ताड़का उन पर अटैक करे जा रही है, फिर इवेंचुअली फिर एक बार विश्वामित्र उनको याद दिलाते हैं कि नहीं, तुमको मारना पड़ेगा, देयर इज नो वे आउट, अधर्म जहां पर होगा जिस भी रूप में होगा उसको खत्म करना एक राजा का कर्तव्य है। और फिर आखिर में जाके ताड़का का वध होता है। तो ये जो राजधर्म का पाठ है जो श्रीराम को मिला वो अपने जीवन में कभी नहीं भूले, सबसे पहले प्रजा, सबसे पहले अपना समाज, सबसे पहले राजधर्म, बाकी सब उसके बाद
जी।
और फिर आगे जाके तो हाँ वो सिद्धार्थ,
फिर अहिल्या का प्रसंग आता है।
हाँ, तो जब वो मरीच सुबाहु के साथ उनका टकराव हो जाता है, सुबाहु का वध हो जाता है, मरीच वापस जंगल में गिर जाता है घायल होके, और फिर वहां से निकलते हैं वो लोग मिथिला जाने के लिए, सिद्धाश्रम से विश्वामित्र उनको मिथिला लेकर जाना चाहते हैं क्योंकि वहां पे राजा जनक का कोई यज्ञ है। तो जब वो मिथिला के पास पहुंच ही रहे होते हैं तो एक जंगल सा होता है जहाँ पे एक आश्रम है। तो श्रीराम जी को फिर से विस्मय होता है कि अच्छा ये आश्रम कौन है, यहाँ पर ऐसा एक खाली खाली सा है, ये किसका आश्रम है? तब विश्वामित्र उनसे कहते हैं कि यहाँ पर एक तपस्विनी है, देव रूपिणी तपस्विनी यहाँ पर है, जिनका नाम है अहल्या, और वो अहल्या की कहानी बताते हैं। अब संजय जी, ये जो अहल्या की जो कथा है ये हमने और जो कथा सुनी है उससे भिन्न है, क्योंकि जनरली जो अहल्या की कथा जो लोक मान्यता में है वो ऐसा है कि अहल्या गौतम का जो प्रसंग हुआ था उसमें इंद्र जो थे उन्होंने इनको भ्रम में डालकर, गौतम ऋषि का वेश लेकर भ्रम में डालकर चीटिंग करी अहल्या के साथ, और इसमें दोष इंद्र का था, फिर भी गौतम ऋषि जो अहल्या के पति थे उन्होंने उन्होंने अहल्या को श्राप दे दिया कि वो पत्थर बन जाए, और जब श्रीराम आएंगे तो श्रीराम जब उस पत्थर को पांव से छुएंगे तभी ही फिर वो स्त्री बन जाएंगे, तो ही उनका पश्चाताप खत्म हुआ, ऐसी कहानी जो है। वाल्मीकि रामायण में ये कहानी अलग है। वाल्मीकि रामायण में कहानी ऐसी है कि इंद्र मुनि वेश लेकर आते हैं, परंतु अहल्या ये बात जानती है। उसमें है कि मुनि वेश धर्म सहस्त्राक्षम विघ्नाय, वो मुनि वेश में जो सहस्त्राक्ष इंद्र जो है वो देखती है, परंतु दुर्मेधा मति चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात, क्योंकि उनको पता है कि देवराज है वो मुझे चाहते हैं, तो उस कुतूहल में उनकी वो कहते हैं ना हम लैप्स ऑफ जजमेंट उनका हो जाता है, एंड शी गिव्स इन, अपने मर्जी से वो देवराज के साथ जो भी है वो मान जाती है। अच्छा, फिर जब गौतम आते हैं और देखते हैं, उनको पता चल जाता है कि क्या हुआ उस समय, उस उधर क्या हुआ और कैसे इंद्र ने उनका रूप धारण किया और उनकी जो पत्नी है वो भी इसमें उनके साथ सहमत हुई, तो वो इंद्र को जो है वो दंड देते हैं, वो उनको ये दंड देते हैं कि तुम्हारे जो इम्पोटेंट हो जाओगे, तुम इम्पोटेंट हो जाओगे, तो उसमें कथा ऐसी है कि उसके उनके जो ये बॉल्स है वो गिर जाते हैं और उनको एक अजब रैम जो कहते हैं ना उनके गोट ये लगाने पड़ते हैं, क्योंकि वो इम्पोटेंट होने की उनको सजा दी गई है, जबकि अहल्या को वो कहते हैं कि तुम्हें प्राश्चित करना पड़ेगा इस बात का, और जब तुम्हारा प्राश्चित खत्म हो जाएगा तब फिर मैं आऊंगा, जब श्री राम आएंगे तुम्हारा प्राश्चित खत्म हो जाएगा तब मैं आऊंगा। अच्छा, अभी प्राश्चित की बात जो है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उस आश्रम में कुछ खाए पिए बिना तपस्या में अपने सारे जो इम्पल्सेस है, जो मैं कह रही थी काम क्रोध लोभ मोह, एग्जैक्टली जो विश्वामित्र ने किया, एक 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 कर कर अपने इम्पल्सेस पर वो काबू पाते गए, उसी तरीके से अहल्या ने भी अपने सारे इम्पल्सेस पर एक 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 करके वो काबू पाती गई, और इसीलिए जब श्रीराम और लक्ष्मण जी को जब ले जाते हैं विश्वामित्र, तो वो कहते हैं यहाँ पर देव रूपिणी है, देव रूपिणी तपस्विनी है, इनकी इतनी तपस्या है, इतनी शक्ति है इनके तपस्या में कि आप जाकर इनके पैर छुओ। राघव तस्याह पादव जग्रहतु, वो कहते हैं कि इनके जो पांव है आप जाके छुओ, इनके पैर जाकर पकड़ो, और श्रीराम और लक्ष्मण अहल्या माता के पैर छूते हैं। फिर उसमें ये कथा आती है कि फिर गौतम भी वापस आ जाते हैं एंड फिर वो अपना लेते हैं अहल्या माँ को और वापस वो अच्छे से जीवन जीते हैं। तो जो हम कहते हैं ना कि सनातन धर्म की जो एक विशिष्टता है संजय जी की, वो ये मानती है कि मनुष्य द्वारा कुछ ना कुछ गलती कभी हो सकती है, क्योंकि हमारे सब में इम्पल्सेस है, हमको ये अवसर हमेशा मिलता है कि हम उसको सुधारे, और अगर हम उसे सुधार पाए तो हम भी ऋषि बन सकते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जो इम्पल्सेस है, जो इंद्रिय है, उन पर कंट्रोल पाना, इंद्रिय निग्रह इज द बेस ऑफ इट, और इसने जो पा लिया वो तपस्विनी हो गया, वो साधु हो गया। ये वो कथा है जो अहल्या की इसमें आती है, और कई बार क्योंकि वो पत्थर रूप उनको दिया जाता है और कहते हैं कि पत्थर को छू लिया तो मिसोजिनी और ऐसे सब जो आक्षेप लगते हैं, वो अगर वैसे देखा जाए वाल्मीकि रामायण की दृष्टि से तो ऐसा नहीं है, उल्टा है उसका, कि जो तपस्विनी है वो अगर स्त्री भी है तो श्रीराम भी उनका आदर उतना ही करेंगे। तो ये कथा वाल्मीकि रामायण में आती है।
जी, मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप कृपया अपने प्रश्न व्हाट्सएप के माध्यम से और सुपर चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं और निश्चित पूछें, क्योंकि अमी गणात्रा जी की ये जो पुस्तक है अत्यंत रुचिकर है। और इसके बाद फिर आप रामायण में सीता माता के बारे में क्या है, उनका जो जन्म है उसके बारे में क्या है?
रामायण, वाल्मीकि रामायण में तो जैसे उनका नाम सीता रखा गया है क्योंकि वो जो प्लाव होता है फरो, वो जो लाइन जमीन में डालते हैं जब खेती के लिए करते हैं, तो उससे उनका नाम आया है। तो कथा ऐसी है कि राजा जनक यज्ञ के लिए जमीन की सफाई कर रहे हैं, भूमि की सफाई कर रहे हैं, और जब सफाई हो रही है तब भूमि में उनको जब वो कर रहे हैं वो फरो से जो लाइन से, तो उनको सीता माँ एक बच्ची मिलती है जो वो ग्रहण करते हैं और कहते हैं कि अच्छा ये मेरे लिए प्रसाद रूप है और इसको ये मेरी पुत्री, आज से मेरी पुत्री बन के रहेगी। अच्छा, उनके परिवार में, राजा जनक के परिवार में एक धरोहर है, वो धरोहर है वो शिव धनुष का है, और वो इस पुत्री को प्रसाद रूप लेकर इतने प्रसन्न होते हैं कि वो कहते हैं कि इसका विवाह मैं उसी मनुष्य से करूंगा जो इस शिव धनुष को उठा पाएगा। और फिर इसमें है कि हाँ बस वो उनके घर में खेलते खेलते बहुत प्यार से, बहुत लाड़ प्यार से बड़ी हुई है, और जब वो शादी लायक होती हैं तब बहुत सारे जो राजा युवराज हैं वो प्रयत्न करते हैं उनका, उनसे विवाह करने के लिए, और जो जनक, राजा जनक की जो का जो क्लॉज है कि भाई शिव धनुष उठाए, तो कोई शिव धनुष उठा नहीं पाता। तो फिर इनको चिंता भी होती है कि अच्छा तो मेरी पुत्री का विवाह कैसे होगा, ये तो कोई शिव धनुष उठा ही नहीं पा रहा है। फिर उसमें ऐसा होता है कि विश्वामित्र जी जो है वो राम जी को जब लेके आते हैं जनक राजा के यज्ञ में, तब वो श्री राम से भी कहते नहीं है कि आने का प्रयोजन क्या है, ठीक है, वो केवल जनक को इतना वो शिव धनुष की बात कहानी बताते हैं और राजा जनक से कहते हैं कि आप उस धनुष को लेकर आओ क्योंकि ये दो जो क्षत्रिय पुत्र हैं, युवराज हैं, वो देख पाए उनको। तो वो उसमें स्टोरी, वो ऐसा व्यू ऐसा है कि 5,000 हट्टे कट्टे नव युवक, 5,000 हट्टे कट्टे नव युवक उस धनुष को खींच के लेकर आ रहे हैं, एक गाड़ी में ऐसे खींच के लेकर आ रहे हैं, और जैसे ही वो आता है तो ऐसे मस्ती में जैसे वो लीला कर रहे हो वैसे श्री राम जी वो धनुष उठा लेते हैं, जो 5,000 युवक खींच कर नहीं ले पा रहे उठा लेते हैं और उसपे प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं और उससे वो धनुष टूट जाता है। तो अब ये है कि जनक कहते हैं कि अच्छा अब ये धनुष टूट गया, ये तो मतलब मैं जो मेरी बात थी कि मेरी पुत्री का विवाह उसी से होगा जो ये धनुष तोड़ता है, तो अब मैं मेरी पुत्री को आपको अर्पण करता हूँ, और सबसे पहले तो ऑफकोर्स इसके लिए मुझे राजा दशरथ की अनुमति चाहिए। तो जाके राजा दशरथ को वो भेजते हैं समाचार और राजा दशरथ भी खुश होते हैं, आते हैं और फिर वो विवाह होता है। तो अगेन जनरल अंडरस्टैंडिंग में वो एक स्वयंवर की बात है, वाल्मीकि रामायण में नहीं है, बट खैर उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर उस तरीके से फिर सीता राम जी का विवाह होता है, वो लोग अयोध्या जाते हैं और उसके बाद का जो उनका वनवास के पहले के जो कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ वर्ष जो वो अयोध्या में बिताते हैं और कैसे एक दूसरे के प्रति उनका प्रेम बढ़ते ही चला जाता है, बढ़ते ही चला जाता है, इसकी इस विषय में आता है कि वो है कि हृदयाम हृदय, वो ऐसे बात करते हैं कि हृदय से हृदय उनकी बात करते हैं, उनको शब्दों की भी आवश्यकता नहीं है। और धीरे धीरे वो कहते हैं कि राम जो है वो सीता के मन में बसते ही चले जाते हैं, बसते ही चले जाते हैं, और सीता जो है वो राम के मन की रानी हो गई है, कि दोनों एक दूसरे में एकदम, दोनों एक दूसरे के प्यार में ओत प्रोत से हैं। तो ये बात आती है,
कहके ही क्या क्या वर्णन है वाल्मीकि रामायण।
कैकेयी जो है वो युवा है, अत्यंत सुंदर रानी है दशरथ, राजा दशरथ की, और जब से कैकेयी माँ के साथ विवाह हुआ है तब से दशरथ उन्हीं में है। तो ये थोड़ा सा आता है कि क्योंकि वो सुंदर है, युवा है, इसलिए राजा दशरथ का किसी और रानी की ओर ध्यान ही नहीं है, केवल कैकेयी माँ की ओर ध्यान है। परंतु कैकेयी जो है वो भी श्री राम से उतना ही प्रेम करती है जितने बाकी रानियां, मतलब कौशल्या माँ जितना श्री राम से प्रेम करती है वो भी उतना ही प्रेम करती है। तो जब तक वो राज्याभिषेक की बात नहीं आई होती है तब तक कैकेयी माँ भी कोई राम जी या भरत में कोई फर्क करती है ऐसा नहीं है। मेन डिस्क्रिप्शन कैकेयी माँ का वो राज्याभिषेक के समय ही आने लगता है, कि जब राज्याभिषेक का समाचार होता है और दशरथ कहते हैं कि अच्छा अब ये श्रीराम का जो राज्याभिषेक का डिसीजन है वो भी कैसे लिया गया, वो ऐसे नहीं था कि क्योंकि चलो राजा के मन में आ गया तो डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं था। उनको मन में है कि मुझे मेरा जो उत्तराधिकारी है अधिकारी है वो श्री राम बने, परंतु उसके लिए वो अपनी सभा बुलाते हैं, जो मिनिस्टर्स हैं उनके उन सब को तो बुलाते ही हैं, पर जो बड़े नागरिक हैं, जो नागरिक है, जो उनके सामंत राजा है, सबको इकट्ठा करते हैं, समाज के जो बड़े हैं उन सबको इकट्ठा करते हैं और उनको पूछते हैं, उनको कहते हैं कि मेरा विचार है कि श्रीराम को मुझे उत्तराधिकारी नियुक्त कर देना चाहिए, आपको क्या लगता है? तो सब लोग कहते हैं हाँ हाँ हाँ, आप उनको उत्तराधिकारी नियुक्त कर दो, हमारी हाँ है। दशरथ कहते हैं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, केवल मैं राजा हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए आप हाँ हाँ कर दो ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या आपको ऐसा नहीं लगता मैंने भी अच्छा राजा राज्य किया हुआ है अब तक, तो आपको ऐसा क्यों लगता है? आप मुझे बताइए कि क्यों आपके हिसाब से श्रीराम जो है वो ये राज्य पाने के अधिकारी है? अगर आप कन्विंसिंगली मुझे बताएंगे तो ही मैं श्रीराम को नियुक्त करूंगा, या फिर आप मुझे बताइए और कौन है आपके मन में। तो फिर वो कहता है ना कि एज अ कंसेंसस, फिर अलग अलग करके अलग अलग लोग जो है, समाज के लोग हैं, राज्य के लोग हैं, वो बताते हैं, वो श्रीराम के अलग अलग गुणों का वर्णन करते हैं, उनके उपलब्धियों का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि नहीं, इन सब कारणों से हमें लगता है श्रीराम जो है वो इस राज्य, इस महान कौशल राज्य अयोध्या नगरी के राजा होने के लिए उपयुक्त है। खैर, तो ये बात जब आती है, तब सबसे पहले जब मंथरा को ये बात पता चलती है, जो कैकेयी के साथ कैकेयी से आई थी, उनको ये बात पता चलती है, और वो जाके कैकेयी को जब पहली बार बताती है कि अरे एक बहुत बुरा समाचार है, राम जी राम को तो को राजा बनाने का निर्णय ले लिया गया है, तो उस समय कैकेयी गुस्सा नहीं होती, वो तो अत्यंत खुश हो जाती है। वो कहते हैं कि अरे इससे अच्छा समाचार क्या हो सकता है कि मेरा राम जो है राम को राजा बना दिया गया है, मैं तो बहुत खुश हूं। तब जो वो इंसिडेंट है ना संजय जी, वो बहुत सुंदर है, किस तरीके से धीरे 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 करके मंथरा उनका ब्रेन वॉशिंग करते हैं। तो वो कहते हैं अरे तुम्हें क्या पता है, तुम्हें तो अक्ल ही नहीं है कि तुम क्या बात कर रही हो, तुम ये सोचो तुम्हारा और भरत का क्या होगा अगर राम उत्तराधिकारी बन जाते हैं। तो खैर शुरुआत में तो कैकेयी के मन में नहीं बैठता, फिर धीरे धीरे करके कैकेयी उनको वो जो स्त्री जलसी होती है ना उसका बात कराती है। वो कहती है कि अब तक राजा ने तुम्हारे कारण बाकी रानियों को भाव नहीं दिया, अब जब कौशल्या का पुत्र राजा बन जाएगा तो उसका भाव तो तुमसे बहुत बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा तुम्हारा ये तुम सोचो। अब तक जो तुम सब पे ऐब झाड़ती थी, अब सामने तुम्हारा क्या होगा? तो भले ही राजा दशरथ ये कहे कि तुम उनकी सबसे प्रिय रानी हो, जब काम की बात आई, जब किसी को नियुक्त करने की बात आई, तब तो उन्होंने कौशल्या का ही पक्ष लिया, ये तुम देखो। और इस तरीके से वो उसकी जलसी फैक्टर को बढ़ाती है और फिर कहती है कि और तुम भरत का सोचो। वो कहती है कि राम जो है ना उनको लक्ष्मण और शत्रुघ्न से तो कोई डर नहीं है, क्योंकि वो तो उनसे बहुत छोटे हैं और लक्ष्मण तो उनके पीछे पीछे घूमते हैं, उनको डर किससे है? केवल एक से है, भरत से। इसीलिए अगर वो राजा बने तो वो कुछ भी कर सकते हैं भरत के साथ। तो एक तो वो माँ का इंस्टिंक्ट और वो को वाइफ का मात्सर्य, वो दोनों जगा कर कैके की बुद्धि नष्ट होती है। और फिर वो राजा दशरथ को बुलाकर कहती है रामस्य अरण्य गमनम भरतस्य अभिषेचनम की, और वो उनको मतलब जो उनके दो वर दिए गए हैं कैके माँ को, उनका दशरथ का एक युद्ध में उन्होंने जीवन बचाया था, तो उससे तो हम पता कर ही सकते हैं कि कितनी शूरवीर भी वो रानी रही होगी। तो फिर वो हमको पता ही है कि वो दो वर मांग लेती हैं दशरथ से। अच्छा, अब उस समय में जिस तरीके से इंटरेक्शन होता है ना, वो बहुत ही रुचि वाला है। जब कैकेयी वो क्रोधागार में जाती हैं और ये दिखाती हैं सारे अपने जो श्रृंगार है वो निकाल कर, ये दिखाने के लिए कि वो कितनी पीड़ा में है, तो दशरथ का जो इमीडिएट रिएक्शन है राजा दशरथ का, वो ये है कि अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें खुश करने के लिए तो मैं कुछ भी कर दूंगा, अगर तुम चाहो तो जो अपराधी है उनको मैं छोड़ दूंगा, जो अपराधी नहीं है उनको पकड़ लूंगा, तुम कहो वो मैं करने को तैयार हूँ, तुम केवल मुझसे कहो और वो हो जाएगा। तो इतने हद तक वो जाते हैं, क्योंकि उनको भी अंदाजा नहीं है कि होने क्या वाला है, वो क्या मांगने वाली है। तो खैर, और ये वो कुछ डायनामिक्स है उनके बीच का, टू शो हाउ मच राजा दशरथ इज इनटू हर। और फिर ऑफकोर्स जो हम वनवास की बात तो जानते ही हैं, जिस समय वो राजा दशरथ स्वयं नहीं कहते, बट कैकेयी मार श्री राम को कहती है कि अच्छा दशरथ की राजा दशरथ आपके पिता ने मुझे 2 वर दिए थे, उस हिसाब से आपको 14 वर्ष वन में जाना है। तो इवन जो 14 वर्ष की बात है ना, वो भी मंथरा की है। कैकेयी कहती है कि अच्छा ठीक है, अगर वो भरत को राज्य मिल जाए बस है, इनको 14 वर्ष वन में भेजने की क्या जरूरत है। तब मंथरा उनको बताती है कि क्यों 14 वर्ष भेजने की आवश्यकता है। वो कहती है कि सारा जो अयोध्या, सारी अयोध्या की जो सारी प्रजा है वो राम से अत्यंत प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि अगर इस समय राम यहाँ रहे और भरत आ गए तो कोई उनको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। इसीलिए अपना अधिपत्य बना सके भरत, इसलिए राम का यहाँ से जाना आवश्यक है, इसलिए तुम उनको वन में भेजो। तो ये भी कौशल, ये भी मंथरा का आइडिया है उनको ये करने का भी।
जी आगे चले तो वैसे तो इसमें बहुत सारे और प्रसंग हैं, लेकिन समय चूंकि हमारे पास सीमित है तो मैं सीधे वायुपुत्र के प्रसंग पर चलता हूँ।
जी
तो वायुपुत्र का प्रसंग आपने इस पुस्तक में लिखा है।
हनुमान जी का जो चरित्र वाल्मीकि रामायण में उभर कर आता है वो अत्यंत तो सुंदर है। उनको कहा गया है बुद्धिमताम वरिष्ठम। इनफैक्ट एक जगह वाल्मीकि जी कहते हैं कि मतलब वाल्मीकि जी द्वारा कहा गया है कि कोई भी काम में अगर सफलता हासिल करनी हो तो उसके लिए 4 वस्तुओं की आवश्यकता होती है, धृति, मति, धैर्य और अदृष्टि। धृति, दृष्टि, धैर्य और मति, इन 4 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। धृति इज योर रिजॉल्व कि आपने सोच लिया हो आप कर पाते हैं कि नहीं, भले ही कितना ही सामने आपकी परेशानी आए। दृष्टि इज द विजन जो हम कहते हैं कि आगे का सोच सकने का विजन है कि नहीं। मति इज ऑफकोर्स इंटेलिजेंस एंड दक्षता, धैर्य नहीं सॉरी दक्षता। दक्षता इज लाइक आपने सोच तो लिया पर क्या वो इम्प्लीमेंट कर पाते हो कि नहीं। तो ये 4 बातें जो कोई भी कार्य के सफलता के लिए आवश्यक है वाल्मीकि जी के द्वारा कहा गया है कि ये हनुमान जी में है, और इसीलिए वो बुद्धिमताम वरिष्ठम भी है, बलशाली, और ये तो हम जानते ही हैं। तो और इसी बात का बार 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 प्रूफ जो है वो हमें वाल्मीकि रामायण में मिलता है। इनफैक्ट सबसे पहला तो जब शुरुआत में ही जिस तरीके से श्री राम और हनुमान जी का मिलन होता है वो प्रसंग ही बहुत सुंदर है। तो होता ये कि सीता माँ का अपहरण हो गया है और राम, श्री राम और लक्ष्मण नहीं जानते कि सीता माँ को कहाँ लेकर गए, पर अलग अलग लोगों से पूछते पूछते फिर इवेंचुअली कबंध जो उनको एक राक्षस, एक जो ये मिलता है उनको पूछते, वो कबंध कहते हैं कि आप जाओ किष्किंधा में, वहां पे सुग्रीव नामक एक राजा है, वानरों का राजा है, उनसे आप जाकर मिलिए, वो आपका आपकी सहायता करेगा। तो वो ढूंढते, वो सुग्रीव को ढूंढते ढूंढते किष्किंधा आते हैं। अच्छा अब वहां पर ये होता है कि सुग्रीव जो है, सुग्रीव का बड़ा भाई है वाली, जो हम सब जानते हैं, और जो वाली और सुग्रीव के बीच कुछ संघर्ष हो गया है, कुछ लड़ाई हो गई है, जिसके कारण सुग्रीव भागते फिर रहे हैं वाली से। किष्किंधा वो जो जहां पर रह रहे हैं वो उतना ही भाग है जहां वाली का प्रवेश नहीं हो सकता, उसके पीछे भी एक बैक स्टोरी है, और इसलिए वहां पर वाली सुग्रीव रह रहे हैं। तो सुग्रीव को जब पता चलता है कि 2 हृष्ट पुष्ट युवक एकदम बहुत ही अच्छी बिल्ड वाले, ऐसे देखकर आंखों में चेहरे पर चमक है, तेजस्वी युवा दो वहां पर आ रहे हैं, बड़े बड़े धनुष लेकर आ रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये तो निश्चित ही वाली ने मुझे मारने भेजा होगा, और वो अत्यंत डर जाते हैं कि अरे बाप रे अब क्या किया जाए क्या किया जाए। तो सुग्रीव के साथ उनके एक मंत्री है, वो मंत्री है जिनका नाम है हनुमान। हनुमान जी कहते हैं कि अरे आप डरो मत, आप अज्यूम क्यों कर रहे हो, हमें क्या पता ये क्यों आए, अज्यूम करने से तो कुछ नहीं होगा, हम कहीं भाग भी नहीं सकते, वाली स्वयं तो यहाँ आ नहीं सकता है, तो आप डरो मत, पहले पता तो करते हैं ये कौन है। तो सुग्रीव कहते हैं बात सही है, आप जाओ पता करो। तो ऐसे मुनि वेश धारण करते हैं हनुमान जी और आते हैं राम लक्ष्मण के पास, और फिर वो उनसे वार्तालाप शुरू करते हैं। तो वो जो वार्तालाप है वो इतना सुंदर है कि वो सबसे पहले तो हम जो कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन, एक अच्छा कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, एक अच्छा नेगोशिएशन कैसे होना चाहिए, सबसे पहले जब हम शुरू करते हैं कोई भी बिजनेस डील हो कोई भी, तो उस सब में ही आता है। तो वो शुरू करते हैं कि अरे आप दोनों तेजस्वी युवा कौन हो, आपको तो युवराज होना चाहिए, परंतु मैं देख रहा हूं कि आपने कोई भी आभूषण नहीं पहने, आप तो इतने तेजस्वी हो कि आपसे तो ये जो यहाँ की धरती जो है वो कंपन हो रही है, आप तो इतने तेजस्वी हो कि आपकी प्रभा से ये किष्किंधा जो है, ये पंपा नदी है, वो भी चमक गई है। अब बताओ तो सही आप कौन हो, ऐसे चौड़े स्कंध वाले, और वो इतने सुंदर सुंदर एडजेक्टिव्स का प्रयोग करते हैं कि किसी का भी मन ऐसे फूल जाए कि अरे मेरा इतने ही वो मेरी बढ़ाई कर रहे हैं। पर श्रीराम तो श्रीराम है, वो उस पूरे समय चुप रहते हैं। अच्छा, अब हनुमान जी ने देखा कि वो जो कर रहे हैं उनकी जो टैक्टिक है वो काम नहीं कर रही। फिर उनको लगता है नहीं, अब इस सिचुएशन में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो सही है वो मैं कहूंगा। तो वो कहते हैं कि अच्छा आप मुझे जवाब नहीं दे रहे, मैं इतना आपसे कह रहा हूँ आप उत्तर नहीं दे रहे, कोई बात नहीं मैं आपको बता देता हूँ मेरे आने का उद्देश्य क्या है, तो आपको मुझ पर विश्वास हो। और वो कहते हैं कि ऐसे सुग्रीव है, वो आपसे मित्रता चाहते हैं और वो यहाँ पर आए हैं। अच्छा, अब इस दौरान श्री राम जो है वो इनको एकदम सही से ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो लक्ष्मण को कहते हैं कि ये जो आज हमारे सामने आए हैं इनकी वाणी इतनी मधुर है, इनकी भाषा इतनी शुद्ध है, इतनी संस्कार संपन्न है कि कोई भी जो तीनों वेद पढ़ा ना हो, बेसिकली ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ना पढ़ा हो, उसकी वाणी और उसकी बुद्धि ऐसी हो ही नहीं सकती। और जो बोलने का तरीका भी है एकदम अविलंबित, एकदम फ्लो में वो बोल रहे हैं, असंदिग्ध, कोई भी इसमें क्वेश्चन मार्क आ सके ऐसी उनकी भाषा नहीं है। और वापस कैसी कैसी हृदय हर्षिणी, मन को प्रसन्न कर दे ऐसी इनकी वाणी है। ऐसे जिसके भी ऑफिसर्स हो, ऐसे जिसके भी दूत हो ना, उसका कोई काम कभी ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। और वो और फिर ऑफकोर्स वो कहते हैं कि हाँ हम भी वाली को सुग्रीव को मिलने आए हैं, तो हम जानते हैं सुग्रीव के बारे में, आप हमें ले जाओ। और वो ले जाते हैं और फिर उस तरीके से उनकी मित्रता होती है। तो ये सबसे पहला प्रसंग है जो श्रीराम और हनुमान जी के मिलन का प्रसंग जो आता है वाल्मीकि रामायण में। और उसके बाद तो हम जानते ही हैं कि किस तरीके से जभी भी देयर वाज अ चैलेंज, हनुमान जी ने उस चैलेंज को किस तरीके से अपने बुद्धि से, अपने भाव से उसको मिटाया, वो उन्होंने पाया। जैसे सुंदरकांड में तो हम जानते हैं कि वो सीता जी को ढूंढने गए थे, जब सीता जी को वो ढूंढने जाते हैं तो उनको तो काम इतना ही कहा गया था कि आपको सीता जी को ढूंढ के आना है, कहाँ पर है सीता जी उनका पता लगाना है। पर जब वो लंका पहुंचते हैं, अशोक वाटिका में सीता जी को देखते हैं, उनसे वार्तालाप होता है और वो सीता जी को कहते हैं कि आप मेरे साथ ही चलिए, आप मेरे साथ चलिए, क्यों आपको और टाइम यहाँ पर रहना है, मैं आपको लेकर जाऊंगा। तब सीता जी कहती है कि नहीं मैं आपके साथ नहीं चलूंगी, क्योंकि एक तो आपका वेग जो है जब आप जाओगे वो मैं सहन कर पाऊंगी कि नहीं यही मैं नहीं जानती, दूसरी बात मैं किसी पर पुरुष को छूना नहीं चाहती, तीसरी बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि अगर मैं आपके साथ आ गई तो मुझे छुड़वाने का श्रेय आपको मिलेगा, मेरे पति को नहीं। मेरे पति के सर पर कलंक लगेगा कि वो अपनी पत्नी को छुड़ा कर नहीं ला पाए और ये मुझे मान्य नहीं है। मैं नहीं चाहती कि कभी भी कोई भी श्री राम जी पर ऐसा आक्षेप कर सके, ऐसा आरोप लगा सके, इसीलिए मैं चाहूंगी कि वो स्वयं यहाँ आए, रावण को हराए और मुझे यहाँ से लेकर जाए। तो चलो ठीक है, उस समय तो अब वो कहते हैं ठीक है अब वापस लंका जाकर उनको ये समाचार देना है। परंतु हनुमान जी है वो ये तो समझ गए अब युद्ध होना तो निश्चित है, रावण के साथ युद्ध होना निश्चित है, और अगर युद्ध होगा तो उसके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए कि जो दुश्मन है, जो शत्रु है, उसका फोर्टिफिकेशन कैसा है, उसकी सेना कितनी बड़ी है, उनमें कितनी शक्ति है, इसका पता कैसे लगाया जाए। इसीलिए वो कहते हैं मैं अशोक वाटिका को ध्वस्त करता हूं तो मुझे थोड़ा अंदाजा तो आए कि एक इनमें कितनी शक्ति है जिसका हमें ध्यान रखना है, जिसके लिए हमें प्लान करना है, और दूसरा इनको मन में भी थोड़ा डर डालता जाऊं कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। और वो रावण को भी देखना हनुमान जी चाहते हैं कि वो रावण से मिले तो ही उन्हें पता चलेगा कि रावण भी क्या चीज है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मैं जब वापस जाऊंगा तो सुग्रीव और श्रीराम मुझसे क्या क्या प्रश्न करेंगे, क्या क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है जो वो चाहेंगे जिससे वो वॉर प्लानिंग कर सके। तो वो सारी माहिती इकट्ठी कर फिर ही वो लंका वापस जाते हैं और साथ ही में इनके मन में डर भी घुसाते जाते हैं कि भाई ऐसा है आप किससे पंगा ले रहे हो। अच्छा, उस समय एक बहुत ही सुंदर वार्तालाप जो है वो रावण और हनुमान जी के बीच होता है और रावण उनको याद कराता है कि मैं जो हूं ना, मैं कौन हूं, मैं सुग्रीव का सेनापति हूं और श्री राम की ओर से आया हूं। और फिर वो उन्हें याद कराता है कि आप वाली को तो जानते हो ना, ये वाली वही है जिसे आप अपना मित्र कहते थे, वो वाली जितना जितना शक्तिशाली था वाली ने आपको हराया है। वहां पे वो एक कहानी है कि रावण जो है वो वाली से युद्ध करने जाता है, पर वाली इतना शक्तिशाली है कि वो ऐसे रावण को उठाकर वो कहते हैं कि चार समुद्र घुमाया। फिर रावण को लगा कि यार इससे तो हम पंगा नहीं ले सकते, इससे वो मित्रता बना देते हैं। तो हनुमान उनको याद कराते हैं कि वो वाली जिसे तुम हार चुके हो उनको श्री राम ने एक एक एरो से, केवल एक तीर से मारा है, तो तुम ये भूलना मत तुम किससे पंगा ले रहे हो। तो वो ये भी उनको बताते आते हैं, यू नो, कि ये है कि तुम शत्रु की इंफॉर्मेशन गैदर करो और उनको भी मन में डर और संदेह घुसा कराओ। तो ये काम हनुमान जी ने किया था जब वो लंका से वापस आए।
अच्छा, एक ये रावण के बारे में क्या है वाल्मीकि रामायण में, रावण की जो शक्तियां हैं, रावण का जो ज्ञान है, इसके बारे में क्या प्रसंग आता है?
तो रावण जो है वो शक्तिशाली है, रावण जो है वो बुद्धि उसमें है, ये बात की तो कोई ये बात तो कोई मना ही नहीं कर सकता। इनफैक्ट सबसे पहले जब हनुमान जी रावण को उनके सभा में बैठा देखते हैं तो उनका जो वो कहते हैं ना इमीडिएट रिएक्शन ये कि अहो रूपम अहो धैर्यम सर्वलक्षण युक्तता, वो कहते हैं कि अरे इसका रूप रंग इसका जो भाव है प्रभाव है वो तो देखो सारे लक्षण इसमें है, अगर केवल इसमें अधर्म नहीं होता, इसमें अधर्म है, अगर ये अधर्म इसमें नहीं होता तो जैसे इंद्र सारे लोगों पर प्रभाव रखते हैं वैसे सारे लोगों पर ये राज करता, ऐसा इसका प्रभाव ऐसा इसका व्यक्तित्व है, परंतु दुर्भाग्यवश उसमें अधर्म भरा पड़ा है और इसलिए इसका नाश होना ही है। तो वो रूप है लक्षण है, इसीलिए तो वो इतनी तपस्या कर पाए जिससे उनको ऑलमोस्ट इमोर्टैलिटी कि मनुष्य छोड़कर उनको कोई मार नहीं सके, वो ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान पाया। कभी भी वरदान पाने के लिए जो तपस्या करनी होती है वो बिल्कुल भी साधारण नहीं होती। तो सबसे पहली बात तो ये है, तो क्या वो गुण थे? डेफिनेटली वो गुण थे। इनफैक्ट जब रावण की मृत्यु होती है तो मंदोदरी जो है वो रोते हुए उनके पास वो उनके शरीर के पास आती है, उनका जो मृत शरीर है उसके पास आती है और मंदोदरी कहती है मुझे लगता है कि जिस इंद्रियों को आपने पहले वश में कर सारे विश्व पर विजय पाई उस इंद्रियों ने ही इवेंचुअली आपसे रिवेंज लिया, आपसे बदला लिया और वो आप पर हावी हो गई, आपकी इंद्रियां ही आप पर हावी हो गई और इसलिए आपका ऐसा अंत हुआ। अच्छा, इसका अर्थ क्या कि शक्ति थी बुद्धि थी सब कुछ था बट एट सम पॉइंट इंद्रियों का कंट्रोल नहीं रहा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में रावण चूर सा हो गया। और वो कब हुआ? उनको उसे जब वरदान मिल गया कि उसे कोई नहीं मार सकता उसके बाद ये बात उसके साथ होने लगी। तो संजय जी आजकल अब दशहरा आने वाला है, रामनवमी के समय हमेशा एक मैसेज घूमता है अरे भाई हो तो रावण जैसा, वो तो सबसे पहला फेमिनिस्ट है, कंसेंट है ना, उन्होंने तो सीता जी को छुआ भी नहीं, ऐसी ऐसी बात लोग करते हैं और उनको फेमिनिज्म का आइकन रावण को बना दिया है। मतलब क्या कहो आप, ठीक है कि फेमिनिज्म का आइकन, अच्छा सीता जी को उन्होंने सीता जी पर उन्होंने जबरदस्ती नहीं की, सही बात नहीं की जबरदस्ती, पर क्या किसी स्त्री को किडनैप करके लाओ और फिर उसे कहो कि नहीं नहीं तुम जब तक हाँ नहीं बोलोगी तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा, पर अगर तुम मुझे एक महीने के अंदर या पहले सबसे पहले वो एक साल का समय देता है, एक वर्ष का, फिर एक महीने का, फिर दो महीने का, और कहता है शयन मारो, अगर तुम इतने समय में मेरी शयन पर नहीं आई तो तुम्हारे टुकड़े करके तुमको नाश्ते में खा जाऊंगा। ये कोई फेमिनिस्ट के लक्षण है कि आप जबरदस्ती वैसे ना करो फोर्सफुली, पर मेंटली तो आप जबरदस्ती कर ही रहे हो, पर उसमें भी फिजिकल जबरदस्ती ना करने का कारण क्या था? कंसेंट बिल्कुल नहीं था। और यही बात रावण स्वयं अपने मुख से कहते हैं युद्ध कांड में, क्योंकि जब युद्ध उसे श्राप था और ये बात वो कहते हैं, उनका एक मंत्री है महापार्श्व, महापार्श्व जब वो सबको बताते हैं ना कि अरे मैं ऐसे सीता को लेकर, क्योंकि अब जब हनुमान आते हैं तो सब पूछते हैं कि अरे क्या हो गया है ना, ये हनुमान कहाँ से आए, ये सब क्या चल रहा है, तो वो अपने सेनापति मंत्रियों की मीटिंग बुलाते हैं और कहते हैं कि अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे हुआ है, ये सीता वो है, ये राम की श्री राम की पत्नी है, इनको मैं लेकर आया हूँ वगैरह वगैरह। और वो महापार्श्व कहते हैं कि अरे आप रुके क्यों, आप मजे करो, जैसे कुत्ते जो है वो किसी कंसेंट के लिए थोड़ी किसी के उनके उनके अभिप्राय के लिए थोड़ी रुकते हैं, आपको करो आपको जो करना है वो। तब रावण कहते हैं कि अरे नहीं मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे सर पे ब्रह्मदेव का ही श्राप है, जैसे ब्रह्मदेव का वरदान है वैसे ब्रह्मदेव का श्राप है, क्योंकि पुंजिक स्थला नाम की एक स्त्री थी जिसके साथ मैंने जबरदस्ती करी और उसने जाकर मेरे विरुद्ध बात करी, जो सुनकर ब्रह्मा जी ने मुझे मुझे श्राप दिया। अच्छा ये बात भी, पुंजिक स्थला कोई अकेली स्त्री नहीं है जिस पर उसने जबरदस्ती की है, ऐसी बहुत सारी स्त्रियां हैं, रावण का के महल में स्त्रियां ही स्त्रियां भरी पड़ी है, और कितनी सारी स्त्रियां ऐसी है जिन्हें वो जबरदस्ती उठाकर लेकर आया है, जबरदस्ती करी है उन पर। और अगर हम उत्तरकांड की कुछ कहानियां अगर लेते हैं तो उसमें तो और एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं और कौन सी स्त्रियों का उसने अपहरण किया है और उन पर जबरदस्ती की है। ये पुंजिक स्थला की बात तो उत्तरकांड की भी नहीं है, ये बात तो युद्धकांड की है, तो द पार्ट विच वी एक्सेप्ट उसमें है, इसीलिए उसने जबरदस्ती नहीं करी कोई कंसेंट के कारण नहीं, क्योंकि कंसेंट होता तो बाकी सारी स्त्रियों का क्या, उनका तो कोई कंसेंट नहीं था। अच्छा उसमें ये भी कहते हैं कि बहन हो मतलब भाई हो तो रावण जैसा, अपनी बहन के लिए देखो उसने क्या किया, अपनी बहन के लिए उसने जाके इतना बड़ा युद्ध मोड़ लिया, तो ये भी बात सही नहीं है, अपने बहन के लिए नहीं किया कुछ रावण ने, उनकी बहन भी जानती थी। अगर अगेन उत्तरकांड में देखो तो ये आता है कि उसको विधवा करने वाला, शूर्पणखा को विधवा करने वाला भी रावण है, क्योंकि विद्युत जिह्वा जो शूर्पणखा की पति है उनके समाज के साथ जो है उनका उनकी लड़ाई हो जाती है और वो युद्ध में विद्युत जिह्वा मारे जाते हैं। बट खैर शूर्पणखा का जब नाक काटा जाता है, और वो नाक उसका इसलिए काटा जाता है, इसलिए नहीं क्योंकि लक्ष्मण को बिना वजह गुस्सा आ गया, इसलिए नहीं क्योंकि राम और लक्ष्मण मिसोजिनिस्ट थे, नहीं, क्या स्त्री से उनको द्वेष था, ऐसा कुछ भी नहीं था। शूर्पणखा ने, शूर्पणखा को लगा कि ये राम और लक्ष्मण मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये स्त्री उनके साथ है, तो अगर मैं स्त्री को मार दूंगी तो फिर ये लोग जाएंगे कहां, इसलिए वो सीता जी पर अटैक करती है सीता जी को मारने के लिए। उस समय श्री राम सीता जी को बताते हैं और लक्ष्मण को कहते हैं कि इसको दंड दो, और वो दंड के लिए उसके नाक और कान काटे जाते हैं। अच्छा उसके बाद तो हम जानते हैं कि सबसे पहले वो खरदूषण के पास जाती है और वो लोग श्रीराम लक्ष्मण पर आक्रमण करते हैं, जब श्रीराम अकेले 14,000 राक्षसों का वध करते हैं। जब अब समझ गई है शूर्पणखा कि ऐसे तो कुछ नहीं होगा, कुछ और युक्ति करनी पड़ेगी, तो रावण के पास जाती है और सबसे पहले तो वो देखती है कि रावण विलास में चूर है, तो वो उनको डांटती है कि अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे राज्य में क्या चल रहा है तुम जानते नहीं हो। फिर वो खरदूषण 14,000 राक्षसों की बात बताती है और वो कहती है कि मेरी ये हालत क्यों हुई, क्योंकि मैं वो जो राम श्री राम की जो पत्नी है जो स्त्रियों में रत्न समान है, इतनी सुंदर है वो कि जिसका भी वो आलिंगन करेगी वो तो देव स्वरूप हो जाएगा। और वो सीता जी का डिस्क्रिप्शन वर्णन करती है कि इतनी सुंदर वो स्त्री है, मैं तो उसको तुम्हारे लिए जाने गई थी, तव भार्या रूपास्ती सा, कि वो तो तुम्हारी ही भार्या हो सके ना वैसे रूप में है वो, तो उसको लाने को मैं गई थी, त्वया कि आपके लिए आनी तुम उद्यतम, मैं उनकी तुम्हारे लिए आने के लिए उनको लेने गई थी और उन्होंने मेरी ये हालत की। अच्छा अब जब सीता जी का वो वर्णन सुनता है रावण तो उसका पूरा अंग मथ जाता है, क्योंकि कामी है ना वो, काम में एकदम काम से भरपूर है, काम में लगा हुआ है, तो अब उसको ऐसा है कि ऐसी सुंदर स्त्री है ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, अगर ऐसी सुंदर स्त्री है तो उसको मैं छोड़ कैसे सकता हूँ। और इसीलिए वो जाते हैं सीता जी का अपहरण करने, कोई अपनी बहन का प्यार में पढ़कर नहीं करते हैं, वो भी काम में आकर करते हैं, जो रावण की ये जो बात है।
जी जी जी, और काफी समय हो गया है तो कुछ उत्तरकांड के बारे में आपका क्या मत है, क्योंकि उत्तरकांड के बारे में मैंने यहाँ पर ये एपिसोड करके ये सिद्ध कराया था कि उत्तरकांड जो है वो एक प्रक्षिप्त प्रसंग है और इंटरपोलेशन है, और हाँ। वो बिल्कुल प्रमाणित होता है, क्योंकि जो आरंभ में नारद जी कहते हैं कथा किस प्रकार की है वो उससे मेल नहीं खाती, फिर जो किसी भी ग्रंथ की फलश्रुति और महात्म्य है वो अंत में कही जाती है, वो युद्ध कांड में ही कह दी गई है, और उसके बाद ये कहा गया है कि उसके बाद राम का इतने वर्षों तक लगातार शासन रहा, तो उससे ये दिखता है कि वो वहाँ पर समाप्त हो गई कथा। और उसके बाद फिर अचानक उत्तरकांड आ जाता है, उसमें दोबारा फिर वाक्य फलश्रुति महात्म होता है। तो ये जो है कि एक विचित्रता है।
संजय जी इस पे ना आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ना इस पे एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो जो एक्सपर्ट्स ने इन पे काम किया है मैं उनकी राय से जाऊंगी। और आप एकदम सही कह रहे हो कि बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं वो ये मानते हैं कि उत्तरकांड जो है, एंड विद वेरी गुड रीजंस, बहुत कारणों को देकर वो कहते हैं कि उत्तरकांड जो है वो रामायण का भाग नहीं है। दूसरी ओर कुछ ट्रेडिशनल स्कॉलर्स हैं वो ये मानते हैं कि नहीं नहीं उत्तरकांड रामायण का ही भाग है, केवल वो बाद में लिखा गया इतना है, पर ऑल सेड एंड डन ये जो लिखा है वो वाल्मीकि जी ने लिखा है और उसका भाग है। अच्छा, अब मेरा मत ये है, आई एम मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स उत्तरकांड जो है वो एडिशन है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें उसमें जो है ना वो बाकी रामायण से मेल नहीं खाती, ये बात तो पक्का है। परंतु क्योंकि दोनों गीता प्रेस में उत्तरकांड है और क्रिटिकल एडिशन में भी उत्तरकांड है, तो मैंने क्या किया है इसमें, मैंने कहा है कि अगर कोई नहीं मानता उत्तरकांड को तो कोई बात नहीं, जो उत्तरकांड के दो कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं उसको मैं अलग रखूंगी। तो पुस्तक को मैंने तीन भाग में डिवाइड किया है और लास्ट का जो आखिर अंतिम का जो भाग है जिसको मैंने एपिलॉग कहा है, और वहां पर मैंने वो जो एक दो इंस्टेंसेस है उनके बारे में जो मेरा मत है वो मैंने दिया है, ये क्लियर करके कि उत्तरकांड अगर नहीं मानते तो आप उनको इग्नोर कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने उसको ट्रीट किया है, क्योंकि कुछ कुछ कथाएं उत्तरकांड की जो है वो काफी रोचक भी थी, जिसको मैं जो इंक्लूड करना था, पर जहां पर भी मैंने इंक्लूड किया है वहां पर मैंने कॉल आउट करा है कि ये उत्तरकांड का है, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अगर किसको कोई ना मानता हो तो उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर सकता है।
जी, तो इसमें उत्तरकांड में जो एक प्रसंग जो शांबूक वध का है उसको आप कैसे देखते हैं?
हाँ, तो एक तो अगर हम उत्तरकांड के पहले तक देखें तो शांबूक वध में सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, शांबूक वध में लोगों को प्रॉब्लम क्यों होता है, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि उसका उदाहरण देके कहा जाता है कि श्रीराम जो है वो तो कास्टिस्ट है, समाज ही कास्टिस्ट है, हिंदू धर्म ही कास्टिस्ट है, सब लोग कास्टिस्ट है, जातिवादी है, और हमेशा से जो 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 वो जो छोटी जाति कहते हैं उनपे हमेशा से अत्याचार होते रहा है और शंभू वध उसका एग्जाम्पल है, ऐसी बात कही जाती है हम पर, वो नरेटिव ठोकने के लिए हमेशा ये बात कही जाती है। पर अगर हम उस प्रसंग को सही भी मानते हैं तो क्या वो केवल जातिवाद है, क्या वो केवल आइडेंटिटी का प्रश्न है? ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर जातिवाद का प्रश्न होता, अगर श्रीराम जातिवादी होते तो क्या वो गूह जो उनका मित्र है निषाद है उसको गले से लगाते क्या? ये होता ही नहीं। क्या वो रावण जो ब्राह्मण था उसकी हत्या कर देगा? ये होते ही नहीं है ना। तो फिर क्या बात है,
हत्या नहीं वध कहना उचित होगा,
वध, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, रावण का वध क्यों करते वो? क्योंकि वो तो ब्राह्मण था, ब्राह्मण हत्या हो जाती वो, है ना। तो क्या हर चीज आइडेंटिटी के आईने से देखी गई है या कोई और बात है? श्रीराम ने जो भी काम करा है, जिसको दंड दिया है, कोई ना कोई कारण से दिया है। अब इस परिप्रेक्ष्य से अगर हम शंभूक वध की कहानी देखें तो लोग केवल उसमें शंभूक शूद्र उतना ही देखते हैं, पर वो बात क्या थी, वो बात होती कैसे है? तो होता यह है कि सबसे पहले एक जो ब्राह्मण है वो अपने मरे हुए पुत्र को लेकर, एकदम मरण अवस्था के पुत्र को लेकर श्रीराम के दरबार में आता है और कहता है कि कुछ ना कुछ यहाँ गड़बड़ है, कि मेरे पुत्र को कुछ भी नहीं हुआ था और वो आज ऐसे ऐसी उसकी परिस्थिति हो गई है। तो क्या हुआ है ये देखने के लिए श्रीराम जी जाते हैं नारद जी, उनको कहते हैं कि कुछ ना कुछ आपके नगर में ऐसा हो रहा है जो उचित नहीं है। तो वो जाते हैं और वो देखते हैं कि एक जो मनुष्य है वो ऐसे पेड़ से उल्टा लटका हुआ है और बहुत ही इंटेंस तपस्या में रत है। उसके पास जाते हैं और वो पूछते हैं कि कौन आप कौन हो जो इतनी इंटेंस तपस्या कर रहे हो और इतनी तपस्या क्यों कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि मैं शंभूक हूं और मैं इस शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहता हूँ, स्वर्ग लोक पाना चाहता हूँ, स्वर्ग लोक पर विजय पाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये इंटेंस तपस्या कर रहा हूँ। और ये जब श्रीराम सुनते हैं तो उसमें दिया गया है कि वो उसका वध करते हैं और वो कहता है कि मैं शूद्र हूँ, ये इंटेंस तपस्या कर रहा हूँ और उसका वध करते हैं। अच्छा, अब लोग ये कहते हैं कि क्योंकि वो उसको शूद्र था इसलिए उसका वध कर दिया। तो हमको ये देखना होगा कि पहली बात, क्या हर चीज उन्होंने जाति के एंगल से की थी? ये तो हमने देखा कि ऐसा नहीं था, ऐसा प्रसंग एक भी पहले नहीं आया है क्या तपस्वी नहीं होते थे? अगर अगर आप और कोई जाति के हो तो आप तपस्वी नहीं हो सकते, तो ये भी बात नहीं थी। क्योंकि जो श्रवण जो कहा गया है, श्रवण ऋषि की जो बात आती है, जिनका जिनको वो दशरथ राजा की का तीर लग जाता है और मृत्यु होती है जिसकी, और जिसके श्राप, जिसके पिताजी के श्राप के कारण वो कहते हैं कि दशरथ जी बिछड़ जाएंगे अपने लड़कों के साथ, वो जो कथा है उसमें श्रवण जो है वो भी तो एक शूद्र है, वो एक वैश्य पिता और शूद्र माता के पुत्र है, और उनको तपस्वी ऋषि ये सब शब्द उनके लिए उपयोग किए गए हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक जगह एक तपस्वी को अलाउड है और दूसरी जगह तपस्वी को अलाउड नहीं है। तो फिर बात क्या थी? अच्छा, ये जो बात है कि सह शरीर स्वर्ग में जाना, ऐसा प्रसंग पहले आया है क्या और उसके साथ क्या ट्रीटमेंट हुआ है? तो त्रिशंकु करके इक्ष्वाकु वंश के ही एक राजा थे, ठीक है, इनको भी ये था कि मैं सहशरीर चला जाऊं स्वर्ग में, और वो गए अपने जो उनके कुलगुरु हैं वशिष्ठ जी के पास। तो वशिष्ठ जी ने कहा ऐसा कुछ हो नहीं सकता, ये प्रकृति के विरुद्ध है, प्रकृति के विरुद्ध का कोई भी इच्छा इस तरीके से हो नहीं सकती, इसलिए तुम सहशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। अच्छा, तो अभी राजा, वो राजा त्रिशंकु ने क्या किया, वो गए वशिष्ठ जी के शिष्यों के पुत्रों के पास और कहा कि आप मेरे लिए कर दो। तो उन्होंने कहा अरे आपको ऋषि वशिष्ठ ने मना किया है तो आप फिर भी क्यों आए हो, उन्होंने आपसे कहा ना नहीं कर सकते। तो कुछ बात हो जाती है और वो लोग उनको श्राप दे देते हैं कि भाई तुम एक तो गलत इच्छा करके बैठे हो। पर क्योंकि उस समय विश्वामित्र जी अभी भी, उन्होंने वो विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि का की स्थिति हासिल नहीं की है, कुछ कुछ सिद्धियां हासिल की है पर ब्रह्म ऋषि नहीं बने हैं, तो उन्होंने उनका अहंकार अब तक गया नहीं है। तो केवल और केवल क्योंकि वो ऋषि वशिष्ठ को सबक सिखाना चाहते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे लिए अलग से, मैं तुमको सहशरीर स्वर्ग भेजूंगा। और वो सहशरीर स्वर्ग भेजने का प्रयत्न भी करते हैं पर वो भी सफल नहीं हो पाते। तो उसमें भी बात यह है कि राजा के कहने पर भी वो इच्छा पूरी नहीं हुई थी कि सहशरीर स्वर्ग चले जाओ, दिस डिड नॉट इवन हैपन देन, है ना। और इस केस में तो जब वो शंभूक का वध हो जाता है तो ये होता है कि जो ब्राह्मण पुत्र है वो फिर से जागृत हो जाता है। अभी इस प्रसंग को अगर हम जाति के आईने से ना देखे, अगर कोई और होता, अगर जातियों को ड्रॉप कर दे और किसी के कोई एक्शन,
जिनको जाति के आईने से देखना है वो तो देखेंगे ही देखेंगे, वो तो कुछ भी करके कर देंगे, आपकी पुस्तक को ही वो आपकी जाति के नहीं आईने से देखने लगे, तो उनका तो काम यही है, वो तो दिन रात सोते जाते यही सपना देख रहे
हैं। जी वही है ना कि वो फिर सीख क्या है, सीख ये नहीं है कि जाति है, सीख ये है कि आप ऐसा कोई कार्य करोगे जिससे किसी और को परेशानी होगी तो आप दंड के लायक हो। ये उस प्रसंग का प्रसंग से द्वारा आता है। और श्रीराम का सबसे पहला प्रसंग यही था कि चतुर्वर्ण हिताय, सबके लिए जो आवश्यक है वो करना है, अगर दंड के देना है तो दंड देना है, क्षमा दे करना है तो क्षमा करना है, पर जाति के हिसाब से नहीं, जो कार्य हुआ है उस हिसाब से।
राइट, तो अब हम दर्शकों के बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं, तो अब हम दर्शकों के प्रश्नों पर चलते हैं। आप सभी से एक बार पुनः अनुरोध कि चैनल को आप लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट भी करें।